آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
मुख्य समाचारों में कनाडा और ब्रिटिश विदेश मंत्रियों द्वारा ईरानी विमान दुर्घटना में 176 लोगों की मौत की जांच का आह्वान। ब्रिटिश सांसदों ने जनवरी के अंत में यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए पारित किया एक विधेयक और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉन की टेस्ट कैप की नीलामी ने जुटाई $1 million से अधिक की राशि। और लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों ने तेहरान में हुए विमान हादसे की जांच के लिए आह्वान किया है। विमान हादसे में 176 लोग मारे गए थे। कनाडा का कहना है कि ये दुर्घटना, जिसका कारण शुरू में तकनीकी खामियां माना गया था, वो वास्तव में एक ईरानी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल के कारण हो सकता है। यूके के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब का कहना है कि वो कनाडा के आकलन से सहमत हैं और जब दुर्घटना के जांच की बात आती है तो ईरानी सहयोग की आवश्यकता है।
Our view on the crash underlines why we urgently now need an independent, full and transparent investigation to establish what caused it. The Iranian regime must open up to the international community, including access to the crash site, so we can get the truth as quickly as possible to give the families of the victims an understanding of what happened to their loved ones.
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने जनवरी के अंत में यूरोपीय संघ से प्रस्थान को अधिकृत करने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। सदन द्वारा विड्रॉल एग्रीमेंट बिल 330-231 को पारित करने के लिए ये वोट बहस के 3 दिनों के बाद आया है। विधेयक को अब संसद के अनइलेक्टेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया जाएगा। इस विधेयक में देर तो हो सकती है, लेकिन ये कॉमन्स के परिणाम को खारिज नहीं कर सकता है। इस तरह 31 जनवरी को ब्रिटेन ईयू छोड़ने के लिए ये बिल समय रहते ही कानून बन जाएगा। कंजर्वेटिव सांसद सर बिल कैश ने कहा कि यह निर्णय ब्रिटेन के लिए एक अच्छा पल था।
So this is a great moment in our democratic history, and this is furthermore a great tribute to the British people who listened to the arguments that were presented to preserve their democracy. As I have said, and I will never apologize for saying this, because the decisions that were taken were for democratic reasons. That is why we have ended up with our sovereignty back again.
विक्टोरियन फायर फाइटर्स के लिए आग की स्थिति खराब हो जाने की संभावना है। आज शाम स्थानीय समय में ईस्ट गिप्सलैंड के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं और भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। कंट्री फायर एसोसिएशन इंसिडेंट कंट्रोलर ब्रेट मिचेल ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों को शीघ्र ही जगह छोड़नी चाहिए। यू विक्टोरिया में आज शाम के लिए एक ठंडे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है, जिससे शहर में तापमान घट रहा है, लेकिन आग से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति खराब होने की उम्मीद है। वर्तमान में विक्टोरिया में सक्रिय 3 संदेश हैं और साथ ही 5 आपातकालीन चेतावनी भी जारी की गई हैं। एबियार्ड की आग के पास के निवासियों को खाली करने का आग्रह किया गया है और बुकन घाटी और कैम्बिबार फायर के पास सक्रिय आपातकालीन चेतावनी जारी की गई है। उधर न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस के अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि स्नोई माउंटेन्स में लगी आग आपस में विलय हो सकती है। स्नोई माउंटेन्स की आग को आज सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। उधर साउथ कोस्ट के आसपास अभी भी सक्रिय आग और धुएं की धुंध है। राज्य के दक्षिणी इलाकों सहित NSW के कुछ हिस्सों में शनिवार को भीषण आग का खतरा है। इस बीच सर्फ लाइफ सेविंग NSW का कहना है कि सप्ताहांत पर कई बीचेस बंद होंगे। और कैंगरू आइलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क कथित तौर पर एक बड़े नुकसान से बच गया है। आपातकालीन कर्मचारियों ने लगातार इसे बचाने के लिए दिन रात काम किया। वन्यजीव पार्क में काम करने वाले अब घायल जानवरों की ओर ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कोई आपातकालीन चेतावनी सक्रिय नहीं है। अग्रणी लेबर राजनीतिकों ने सरकार से बुश फायर प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकेयर के तहत दी जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए याचिकों की विजिट की संख्या पर एक सीमा लगाने का आह्वान किया है। फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी और शैडो स्वास्थ्य मंत्री क्रिस बोवेन ने संयुक्त बयान जारी करके बुश फायर के संकट के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। वर्तमान में मेडिकेयर प्रतिवर्ष 10 मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य विजिट्स प्रदान करता है। श्री बोवेन कहते हैं कि ब्लैक सैटरडे के बाद हुए हालात से सीखना महत्वपूर्ण है।
A number of constructive, I think, suggestions to the government, calling on them to, for example, lift the cap of 10 visits to a psychologist or counsellor under Medicare, under a mental health care plan in bushfire affected areas. Mental health is very important. We know from Black Saturday that a quarter of survivors of Black Saturday reported mental ill health 4 years after that catastrophic event.
फेडरल विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीसी ने फूड बैंक विक्टोरिया के स्वयंसेवकों को बुश फायर रिलीफ प्रयास में योगदान देने के लिए सराहना की है। श्री एल्बनीसी ने उन विक्टोरियन सुविधाओं का दौरा किया जहां से वो बुश फायर से प्रभावित लोगों के लिए भोजन, राहत और पानी तैयार करते हैं। श्री एल्बनीसी ने कहा कि विक्टोरियन और दक्षिण ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो संबंधित राज्यों में बुश फायर सीजन से पहले इस तरह का दान करते रहें।
Victoria and indeed South Australia are yet to hit what would normally be the peak bushfire season. So at this time it's critical that the community continue to rally. It's critical as well that government continues to do what it can.
भारत जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने और उसे दो केंद्रों में शासित क्षेत्रों में विभाजित किए जाने के बाद अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर समेत 15 देशों के राजनयिक वहां मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों ने राजनयिकों की अगवानी की। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल को सैन्य अधिकारियों के एक दल ने जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से खड़ी की जाने वाली परेशानियां और कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने के उनके प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। राजनयिकों ने घाटी की नागरिक संस्थाओं के सदस्यों से भी मुलाकात की। इन राजनयिकों ने बाद में पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समेत राजनेताओं से भी मुलाकात की। बताया गया है कि सभी बातचीत से सकारात्मक विचार मिले। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने कश्मीर के दौरे के लिए 15 विदेशी राजनयिकों को भेजने की व्यवस्था की, जिसका मकसद ये था कि वे हालात को सामान्य बनाने के प्रयासों का जमीनी स्तर पर अनुभव कर सकें। उन्होंने कहा कि कश्मीर की यात्रा के लिए ऐसा ही एक आयोजन भविष्य में यूरोपीय संघ के राजनयिकों के संदर्भ में भी हो सकता है। विपक्ष इसे गाइडेड टूर बता रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को खारिज किया है। राजनयिकों के इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नाइजीरिया के राजनयिक भी शामिल हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 68 सेंट और भारत के 48.87 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न की ऑस्ट्रेलिया कैप नीलामी में $1,00,000 से अधिक की राशि मिली है। ये नीलामी बुश फायर की अपील के लिए की गई थी। सिडनी के एक बोलीदाता ने इस कैप को $1,07,500 में खरीदा और ये राशि ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस डिजास्टर रिलीफ और रिकवरी फंड को जाएगी। ये कैप श्री वॉर्न के 145 टेस्ट करियर के दौरान पहनी गई थी, जिसमें उन्होंने 708 विकेट लिए थे। श्री वॉर्न ने कहा है कि इतनी बड़ी राशि आएगी ये उनकी उम्मीदों से परे था। और अब बात मौसम विभाग से मिली जानकारी की। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बादल छटेंगे, अधिकतम तापमान 25 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री। होबार्ट में भी आंशिक रूप से बादल रहेंगे, तापमान 18 डिग्री। कैनबरा में सुबह के समय बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में एक दो बौछारें, हवाओं में राहत, अधिकतम तापमान 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। और डार्विन में बारिश और अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।